ஓம் அசதோ மா சத்கமய தமசோ மா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அம்ருதம் கமய. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சர்வே பவந்து சுகினா, சர்வே சந்து நிராமயா, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்சித் துக்க பாக் பவேத். ஜனனிம் சாரதாம் தேவிம் ராமகிருஷ்ணம் ஜெகத்குரும் பாத பத்மே தயோ ஸ்ரித்வா பிரணமாமி முஹுர்முஹு. அப் ஹம் சாத் மே சாந்தி மந்திர போலேங்கே. ஓம் சஹனாவவது சஹனௌ புனக்து சஹ வீயம் கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. கல் ஹம்ன கட்டோபனிஷத் ஷுருவாத் கிமேதா கி நச்சிகேதா கே பிதா வாஜஸ்ரவா கேசே யஜ்ஞ சம்பாதன் கர்த்தே. யஜ்ஞ மே ஜோ ஆவசியக்தா ஹை சர்வஸ்வ கா தான், ஆர் ஜப் சர்வஸ்வ கா தான் கரனே கா சமய ஆதா ஹை தோ வாஜஸ்ரவா கே மன் மே கேசே லோப விருத்தி யா புத்ர கே பிரதி ஆசக்தி ஆ ஜாதி ஹை, ஆர் ஜிஸ்கே காரண வஹ அப்னா ஜோ அச்சா தன் ஹை கோதன் வோ பச்சே கே உத்தேஷ ஸே ரக் லேதா ஹை, ஆர் ஜோ ஐசி காய ஜோ கிசி காம் கி நஹி உன்கா தான் கர்த்தா ஹை. ஆர் உன்கா யஹ இஸ் பிரகார கா தான் தேனா ஆர் யே ஜோ உன்கா கார்ய ஹை அதார்மிக கார்ய யஹ தேக்கர் உன்கா ஜோ புத்ர ஹை ஜிஸ்கி உம்ர 8 ஸே 16 கே பீச் மே ஐசி குச் குமார் ஹை வோ, தோ உஸ் குமார் கோ மன் மே வோ ஸ்ரத்தாவான் ஹை ஆர் உத்கிருஷ்ட அதிகாரி ஹை. உஸ்கே மன் மே பிதா கா கல்யாண கர்னே கே உத்தேஷ ஸே யஹ பாவ ஆதா ஹை கி அப் மேரா கர்த்தவ்ய க்யா ஹை, இஸ் பிரகார கே பிதா கே ஆச்சரண ஸே மே பிதா கி ரக்ஷா கேசே கரூ, அன்யதா உன்ஹே தோ கஷ்ட ஹோகா. அசூர்யா நாமதே லோகா உன்ஹே கஹா வோ தோ தூஸ்ரே லோக் ஜஹான் நிரானந்த ஜோ லோக் ஹை வஹான் தோ வே சலே ஜாயேங்கே, தோ உன்ஹே பச்சானே கே லியே வோ பிதா ஸே கஹதே ஹை கி ஆப்னே முஜே கிசே தான் தியா, மே தோ ஆப்கா புத்ர ஹூ, ஆப்கா தன் ஹூ, மே புத்ர தன் ஹூ. ஆர் தோ பார் பூச்சதா ஹை பிதாஜி தியான் நே தேதே, தீஸ்ரி பார் ஃபிர் பூச்சதே தோ பிதாஜி தோடே குரோதி ஸ்வபாவ கே தே, தோ உன்ஹோனே போல் தியா ஜா மேனே துஹே மிருத்யு கோ தியா, ஜா மர் மிருத்யு கோ தியா, யம்ராஜ் கோ தியா ஐசா போல் தியா. அப் யம்ராஜ் கோ தியா போல்னே ஸே நச்சிகேதா கே அந்தர் ஃபிர் அப் யே தோ ஹமாரே பாரத் கி பரம்பரா ரஹி ஹை கி பிதா கி ஆக்யா மனே சர்வஸ்ரேஷ்ட, ஆர் நச்சிகேதா விசார் கர்த்தா ஹை கி இஸ்ஸே ஹி மேரே பிதா கா கல்யாண ஹோகா, யம்ராஜ் கே பாஸ் முஜே ஜானா சாஹியே, ஆர் வே அப்னே புண்ய பிரபாவ் ஸே யம்ராஜ் கே யஹான் பஹுஞ்சதே ஹை. யம்ராஜ் கே யஹான் பஹுஞ்சனே பர் தேக்தே கி யம்ராஜ் உஸ் ஸமய வஹான் நஹி தே, யம்லோக் மே நஹி தே, வே ப்ரஹ்மலோக் கயே தே, ஆர் வஹான் யம் உன்கே மந்த்ரியோ நே உஸ் குமார் கோ கஹா கி ஆப் ஆவ் போஜன் கரோ, உஸ்னே கஹா நஹி. வோ யம்ராஜ் ஆனே தக் தீன் 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 ராத்ரி தக் யம்ராஜ் கே துவார் பர் ஹி கடே ரஹதே ஹை. ஆர் ஹமாரே யஹா கி பரம்பரா கே அனுசார் அதிதி கா சம்மான் அகர் நஹி ஹோதா ஹை தோ வோ ஹமாரா சப் குச் ஜலா தேதா ஹை, ஹமாரா கியா கராயா அபி தக் ஜோ குச் ஹை வோ சப் குச் நஷ்ட ஹோ ஜாதா ஹை, ஆர் இஸ்லியே அதிதி கோ அக்னி ஸ்வரூப் மானதே ஹை. ஆர் யே தோ வாஸ்தவிக் குமார் தா, தேஜஸ்வி தா, பிதா கா சப்த பாலன் கர்னே கே லியே வோ யம்ரல் யம்லோக் ஆயா தா, தோ யே தோ தேஜஸ்வி தா ஹி. தோ ஜப் யம்ராஜ் தீன் தின் கே பாத் லோட்டே ஹை தோ மந்திரி கேதே ஹை கி யே பாலக் ஆப்கே லியே தீன் தின் ஸே யஹான் பர் ஆப்கி பிரதீக்ஷா கர் ரஹா ஹை, அக்னி ஸ்வரூப் ஹை யே, அகர் நஹி கரேகா தோ யே ஆப்கோ ஜலா தேகா, இஸ்லியே இஸ்கோ ஆப் சாந்த கீஜியே. தப் யம்ராஜ் கேதே ஹை கி தேகோ மேரே அனுபஸ்திதி மே தும் யஹான் மேரே கர் மே ஆகர் ஆதித்ய கிரஹண் நஹி கியா, ஆர் மேரே லியே தும் தீன் ராத்ரி தக் யஹான் கடே ரஹே, இஸ்லியே தும் தீன் வரதான் முஜ்ஸே மாங்கோ. ஆர் யே தீன் வரதான் மாங்னே கே லியே ஜப் கேதே ஹை தப் நச்சிகேதா பஹலா வரதான் கேதா ஹை கி ஜப் மே ஆப்கே யஹான் ஸே வாபஸ் லௌட்டூ तो मेरे पिता प्रसन्नता पूर्वक मुझे स्वीकार करे, मुझे पहचाने। क्यों? क्योंकि यमलोक से कोई वापस गया है ऐसा सुनने में नहीं आता। तो यमलोक से ये वापस मैं जा रहा हूं तो मेरा पुत्र वही पुत्र है और ठीक ठीक वापस आया है ऐसा मानकर मुझे वो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे, उनका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि क्रोध में उन्होंने कह दिया था ऐसा न हो। तो यमराज ने कहा ठीक है तथास्तु। पहले वर्ष से उसने अपने पिता की शांति मांगी। अब दूसरे वर्ष से उन्होंने कहा कि मुझे वो अग्नि चयन, वो अग्नि बने वो यज्ञ, उस यज्ञ की विधि और सब डिटेल्स मुझे बताइए जिससे कि सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग प्राप्त होता है और वहां बहुत दीर्घ काल तक मनुष्य वास कर सकता है, जहां कोई दुख शोक नहीं है, ऐसा वो आनंद वाला जो स्वर्ग है वो कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे ज्ञान दीजिए। यमराज ने वह भी प्रसन्नता पूर्वक मान लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है हम उसका ज्ञान भी देंगे। और वो ज्ञान दिया और कहा कि अच्छे से लो, ज्ञान दिया तुम धारण करो। नचिकेता ने धारण किया, उन्हें कहकर भी दिखाया बताया, ये भी हो गया। अब यमराज कहते हैं कि एक और एडिशनल वरदान हम देते हैं तुम्हें, तुम बड़े अच्छे अधिकारी हमें दिख रहे हो, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, ये जो अग्नि है, ये तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा और इसका तीन बार त्रिनाच के तीन बार इसको संपन्न करने वाला वहां पहुंच जाएगा, उस स्वर्गलोक में पहुंच जाएगा जहां वो अनंत काल तक सुख में रह सकता है, रहेगा। और ये तुम्हारे नाम से नाचिकेत अग्नि, त्रिनाचिकेत अग्नि नाम से ये जाना जाएगा, ये वरदान दिया और उसके साथ साथ एक तेजस्वी एक माला भी उसे अर्पण की। अब कहा तुम्हारे दो वरदान हो गए, अब तीसरा वरदान मांगो। देखिए पहले में पिता की शांति, पिता की प्रसन्नता, दूसरे वरदान में सभी साधक जो अच्छे साधक है जो इस प्रकार का उच्च सुख चाहते हैं अभ्युदय से, इस जगत में जो कुछ मिल सकता है कर्म से, सामान्य मनुष्य की कर्म से, कर्म में प्रवृत्ति होती है और वो ये मानता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। विशेष करके जब हम धर्म मार्ग में आते हैं, शास्त्र मार्ग में आते हैं, तो शास्त्र मर्यादा का पालन कर हमें क्या क्या मिल सकता है, तो फिर और वो एक सूक्ष्म रजोगुण बढ़ता है और साधक और आगे जाने के लिए अलग 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 उपासनाओं का को स्वीकारता है, अंगीकारता है और इस प्रकार वो इस लोक में कुछ प्राप्ति करना चाहता है। तो वो क्या हाईएस्ट क्या प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार का स्वर्गलोक जिसे ब्रह्मलोक भी कहा गया है, वे ब्रह्मलोक तक वो प्राप्त कर सकता है जहां अनंत काल तक, बहुत समय तक, दीर्घ काल तक वह बिना किसी बुढ़ापे के, बिना किसी जरा व्याधि के सुखपूर्वक रह सकता है। तो ये सब बाकी साधकों के लिए, सभी इस पृथ्वी के लोगों के लिए नचिकेता ने ये दूसरा वर मांगा था, खुद के लिए नहीं मांगा था, ये दूसरा वरदान हो गया। और तीसरे वरदान में उन्होंने कहा कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद में कोई कहता है कि कुछ रहता है, कोई कहता कि कुछ नहीं रहता, तो इसका रहस्य क्या है, क्योंकि मृत्यु ये हमेशा रहस्यमय रही है। हम लोग भी पढ़ते हैं, मास्टर महाशय भी ये मृत्यु को लेकर चिंता करते हैं, स्वामी जी ने यहां तक कह दिया, उनके पास कुछ लड़के लोग गए थे तो देखो हमेशा मृत्यु का चिंतन करो, हमेशा मृत्यु का चिंतन करो, माने याद रखो कि शरीर जाने वाला है, जाएगा शरीर। तो बोले ये तो इससे तो हम दुर्बल हो जाएंगे। बोले नहीं, दुर्बल नहीं हो गए, इसका चिंतन करते पहले भले दुर्बलता लगे, भय लगे, लेकिन धीरे धीरे वो चिंतन करते करते अरे ये ख्याल आएगा कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, और फिर एक निर्भयता आएगी और शरीर के प्रति की जो आसक्ति है हमारी वो धीरे 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 कम हो जाएगी केवल मृत्यु का चिंतन करने से। इसलिए भारत में मृत्यु हमेशा इस प्रकार मृत्यु को खूब महत्व दिया गया है और नचिकेता इसलिए वही प्रश्न पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या है, जो हमें मालूम नहीं होता उसके प्रति हमारा एक विशेष आकर्षण होता है जिसे हम नहीं जानते, और वास्तविक मृत्यु के बाद क्या है आश्चर्य लगता है, अब भी है अब भी नहीं है, अभी तक सब कुछ था अब भी तक कुछ नहीं है, क्या है, कौन था, कौन गया, तो गया तो था मतलब वो था क्या कि कुछ नहीं था, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और इसको लेकर है सब शास्त्र में ही इसका उत्तर मिलता है। कभी कभी ऐसे कुछ विशेष अतीन्द्रिय अनुभव वगैरह प्राप्त होते इससे कुछ अनुभव होता है, लेकिन सब लोग उसको मानते भी नहीं, स्वीकारते भी नहीं। अब जिसका जैसा अनुभव होता है वो स्वीकारता है, कुछ लोग जो विश्वास वाला जिनका एक माने मन होता है वो स्वीकारता है, बाकी तर्क वाले बोलते हैं अरे बेकार कुछ भी बोला तुमने मान लिया और इसका जवाब कुछ नहीं, तर्क से भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये मृत्यु के संबंध में कहते हैं मुझे वो निश्चित ज्ञान दीजिए क्योंकि आप मृत्यु की देवता है। और यमराज उसे वो कहते हैं कि देखो इसको छोड़कर तुम और दूसरा कुछ मांगो क्योंकि ये ज्ञान बड़ा गूढ़ है और उसके लिए एक विशिष्ट अधिकार की आवश्यकता है और इसके अधिकार है कि नहीं उसका वो जानने के लिए उसे पहले प्रलोभन देते हैं। अनंत काल तक का जीवन लो, अनंत सुख लो, पूरे पृथ्वी में तुम पृथ्वी का भोग करो, लेकिन नचिकेता बड़ा पक्का है और नचिकेता कहता है मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यमराज ने ये कहा, नचिकेता अब कहता है कि नहीं, नचिकेता का वैराग्य और उसका जो विवेक है वो बड़ा स्थिर है। यहां से नचिकेता कहता है शोभावामर्त्यस्य यदंतकै सर्वेन्द्रियाणाम जयंती तेज अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यहाँ इसका नचिकेता का, हे यमराज ये भोग कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार के है और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं, यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है, आपके वाहन और नाच गान और ये सब आपके ही पास रहे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए ये बड़ा विरागी था तभी उसने एकदम वास्तविक सार बात कही है नचिकेता ने कि ये जो है ये भोग कैसे है, एकदम नश्वर है, आज है कल रहेंगे कि नहीं गारंटी नहीं, हम सब जानते हैं ये सब नश्वर है, कल की सुबह कैसी होगी पता नहीं है, फिर भी मनुष्य इसी प्रकार जाता है, शरीर हमारा आज है कल रहेगा कि नहीं गारंटी नहीं, फिर भी हम रहता। और दूसरा भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, ये जो है कि हमको लगता है कि हम भोग कर रहे, अब हम वस्तु का भोग कर रहे या वस्तु हमारा भोग कर रही। धीरे धीरे जब मनुष्य भोग करते 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 देखता है तो लगता है कि ये और वास्तविक वो हम भोग नहीं करते, हमारे पास इंद्रिय है लेकिन इंद्रिय का जो विषय है वो ज्यादा बलवान है। देखिए जिसके मन में कुछ इच्छा नहीं ऐसे ही घूमने बाजार में चले जाओ, वो बाजार की चीज अट्रैक्ट करती है, नेत्र को नजर पड़ गई, नजर के साथ वो वस्तु अंदर आ गई, मन इंद्रिय का संयोग हो गया और आपको इंद्रियों में उलझा दिया, अरे इसको ले ही लो ना, रेट पूछ लेते हैं, चाहिए नहीं विशेष नहीं लेकिन रेट पूछ लेते हैं, फिर थोड़ा कम ज्यादा करके ले ही लो, ले लिया। ये वस्तु की ताकत है, इंद्रियाणि परा अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये बताएंगे माने ये जो इंद्रियों के विषय है बड़े पावरफुल है, ये इनमें बड़ा बल है तो ये इंद्रियों को खींचते हैं, तो इंद्रियों ने इनका भोग किया कि इन्होंने इंद्रियों का भोग किया, और इंद्रिय तो हमारे पास है। तो ये आता ययाति का प्रसिद्ध श्लोक, इसलिए ययाति को लगता था कि मुझे भोग करना है, लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं मैं भोगा गया हूं, ये जो वस्तुओं ने मुझे भोग लिया है, और जब भोग हो जाता तो क्या होता है, अगर मुझे भोग लिया तो क्या होगा, मेरी शक्ति चली गई, मैं निस्त्राण हो गया, तो जो शक्ति मेरा सामर्थ्य जिससे जाता है वो चीज अच्छी है या गलत है, जहां मेरी शक्ति जाती है वो तो मेरा भोग हो रहा है, तो मैं ऐसी चीज को मैं क्यों मांगू। नचिकेता ये कहता है कि संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं ये भोग, और ये कैसे है कल रहेंगे कि नहीं इनका कोई पता नहीं, ऐसे भोग है ये, और इसलिए आपके नाच गाने और सब भोग आप ही के पास रहे, मुझे नहीं चाहिए, ये नचिकेता कहता है। बहुत सुंदर श्लोक है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावत इच्छसित्वम वरस्तु मे वरणीय स एव। इसके सिवा मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता, अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे, जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। अब देखो नचिकेता बड़ा होशियार और कितना सूक्ष्म बुद्धि वाला है, कहते हैं कि देखो हम तो आपके पास आ गए हैं, आप तो मृत्यु की देवता है, आपके पास हम आए हैं, हमको तो क्या नहीं मिलेगा, हमको सब कुछ मिल ही गया है, हमको सब कुछ मिल ही गया, हमने आपका जब दर्शन कर लिया है और जब तक आपका शासन है तब तक तो हम जीवित रहेंगे, और जब आप हमको ये करेंगे तभी हम जाएंगे, लेकिन हम वरदान तो वो नहीं छोड़े, हम तो जानना तो वही चाहते है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चय के, क्या रहता है क्या नहीं रहता है ये ही हम जानना चाहते हैं। और अभी ये जो ज्ञान अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये इतना माने इसका महात्म्य इतना जबरदस्त है कि आगे हम देखेंगे। यमराज यहां कहते हैं कि ये ज्ञान ऐसा है कि इसकी बुद्धि से भी अगर धारणा, इसलिए हम लोग ठीक ढंग से इसको जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बुद्धि से, भले ही अनुभूति में नहीं आ रहा है हमारे, लेकिन बुद्धि से भी जानने पर हम लोगों को ये जो ऊपर का ज्ञान होता है ना, हमने तो चांद देखा नहीं लेकिन चांद के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मंगल हम गए नहीं मंगल पर लेकिन मंगल के बारे में सुनकर और ऐसे टीवी में देखकर और पढ़कर हमें कुछ ज्ञान हो गया है। तो ये बुद्धि से धारण किया हुआ ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान है और ये विधि का ज्ञान है, ये भी जानने से हम ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के लोग हैं, जो साधना से मुक्ति कामना से और विरक्ति के बाद ब्रह्मलोक में जाया जाता है वो वहां से लौटता नहीं है, लेकिन इस प्रकार इंद्रियों को बिना जीते और संपूर्ण कामनाओं का त्याग बिना हुए अगर हम ब्रह्मलोक जाते हैं तो हमको फिर से आना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मलोक का सुख केवल इतना ये ज्ञान धारण करने वाले को भी प्राप्त होता है, इसलिए ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी ये जो हम ये वल्ली प्रथम अध्याय की जो वल्ली एक पढ़ रहे हैं इसकी विशेषता महत्व देखिए, तृतीय वल्ली के अंत में बताएंगे ये। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यम मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते कोरमेत। कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुख शरीर सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। जो विवेकी, कौन ऐसा विवेकी है जो देखता है कि इसमें बुढ़ापा जरा और ये सब प्राप्त होता है, ऐसे इसमें रहने वाला विवेकी मनुष्य ये आज है कल नहीं रहने वाली है भोगों को कौन मांगेगा। माने ये उनके यमराज को अपना विवेक से वो जहां तक पहुंचे हैं उस भाव को बता रहे हैं कि आप जो मुझे जो प्रलोभन दे रहे हैं, ये ले लो, इतने काल तक रहो, ये भोग करो, ये भोग लेके मैं क्या करूं। यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांप्राये महति ब्रूहि नस्तत् योयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में विज्ञान है वह हमसे कही है, यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। पुनः ये बड़ा सूक्ष्म वर है मैं समझता हूं, और इसके सिवा वो परलोकगत जीव के संबंध में जीव जाता है शास्त्र वो भी जानता है शास्त्र, इसलिए तो बोल रहा है कि निश्चित रूप से क्या है। अभी आप ही मृत्यु हो, आप तो पूरा रहस्य जानते हो, तो ये मौका हम हाथ से छोड़ने वाले नहीं है, आपको ही बताना है, हम यही जानना चाहते हैं ऐसा। और यहां पर ये पहली वल्ली प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली भाषण समाप्तम। दूसरी द्वितीय वल्ली, अब द्वितीय वल्ली से भी ये सबका ना हमारे जीवन से बड़ा संबंध है। साधक, हम लोग साधक है, मुमुक्षुत्व हमें कुछ कुछ जगा है, कुछ कुछ आया है। देखिए विवेकानंद श्रेष्ठ मुमुक्षा वाले थे, इसलिए उन्होंने श्री राम कृष्ण के रहते रहते इतनी विपरीत परिस्थिति में भी, जब माँ भाई बहनों को खाने को नहीं था, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने श्री राम कृष्ण के पास दौड़कर चले आए और कहा मेरा कब होगा। हम देखते हैं ना कि श्री राम कृष्ण कुछ कुछ लेके लोगों को शांति दे रहे, स्वामी जी उस समय पढ़ रहे थे, और जब एक दिन अचानक वैराग्य तो था ही, घर में मां ने भी कुछ कुछ बातें बोल दी थी कि भगवान भगवान करता है, और वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उसमें मुमुक्षा थी, वो जग गई, अरे मैं क्या समय नष्ट कर रहा हूं, श्री राम कृष्ण ऐसे कैंसर से कब तक है पता नहीं, उनसे जो कुछ लेना है ले लो, अगर नहीं लिया तो मुझे पछताना पड़ेगा, वही छोड़कर भाग के आ गए। ये परम वैराग्य, और बाद में देखा कि रात भर वो काशीपुर के घर को राम 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 बोलते भागते दौड़ते रहते, ये तीव्र वैराग्य का लक्षण। अब ऐसी जब तो मुमुक्षा रहती है तो ये कैसे आती है, ये जो श्रेय प्रेय, अब यहां द्वितीयावल्ली श्रेय प्रेय विवेक, ये जो विवेक है, यह विवेक जीवन में जब अच्छे से उतर जाता है तब एक समय आता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर, या आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, एक लाला बाबू नाम के बंगाल में एक जमींदार थे, टहलने गए थे और देखा छोटी बच्ची अपनी माँ को बोल रही है कि वो तुम अपने वासना को बासन, बासन के आगुन कौबे दे बे माँ, हाँ बासना, तो बासना बासन, वासनाओं को तुम अपनी अग्नि कब दोगे, बस इतना एक शब्द उन्होंने सुना और जो वैराग्य है तो वहीं से सीधे वृंदावन चले गए। अब एकदम थोड़ी होता है, हम ऐसी बातें कितनी बार सुनते हैं, क्या होता है, लेकिन जब ये प्रेय और श्रेय का विचार हमारे जीवन में आ जाता है, प्रेय क्या है, जो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, श्रेय क्या है, जो कल्याण करता है, जो हमारा कल्याण करता है उसी का हमें वरण करना है, माने उसी को स्वीकारना है, उसी को लेकर जीने का प्रयास करना है, एक जीव के इसमें एकदम नहीं आता। लेकिन इसलिए बार 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 आवृत्ति आवृत्ति आवृत्ति, जन्म जन्मांतर में जब हम इस प्रकार की आवृत्ति करते हैं, जन्म जन्मांतर में इन्हीं भाव को लेकर रहते हैं, तो धीरे धीरे उसकी एक ताकत, उसकी एक शक्ति बढ़ती है, तब कहीं किसी जन्म में इन नचिकेता जैसा दृढ़ एक विवेक वाला साधक तैयार होता है। और इसलिए स्वामी जी इसको कहते थे कि ये उपनिषद जानकर नचिकेता जैसा धीर और विवेक हम में आए, इसकी आज हमें आवश्यकता है कि पूरे संसार के भोग जैसे नचिकेता ने त्याग दिए थे, वैसे त्यागने की हिम्मत हम में होनी चाहिए, साधक में होनी चाहिए। परीक्षा, अब इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जानकर यमराज ने कहा, यमराज कहते हैं, अन्न श्रेयो अन्य उतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुष स्नीत तयो श्रेय आददान से साधु भवती हीयते अर्थाद्य प्रेयो वृणीते। श्रेय विद्या है और तथा प्रेय अविद्या और दूसरी है, वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी पुरुष को बांधते हैं, उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वरण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। देखो प्रेय और श्रेय दोनों मार्ग है, श्रेय वाला भी एकदम वो एकदम नहीं, लेकिन श्रेय वाला धीरे धीरे वहां तक पहुंचता है, लेकिन वो भी बनता ही है। पहले जब हम अच्छा लिया, एक गलत मार्ग है एक सही मार्ग है, दोनों मार्ग से वहां पहुंचता है, एक तकलीफ वाला मार्ग है और एक बिना तकलीफ का मार्ग है। सब लोग चाहते हैं कि बिना तकलीफ का फोर लेन रोड से ही जाए, हम चाहते हैं हमेशा, और जो सिंगल रोड है थोड़ा सा है लेकिन शॉर्टकट है, तकलीफ है थोड़ी, अरे नहीं यहां ना देर ज्यादा लग जाता है, शॉर्टकट लगता है, लेकिन हम ये अच्छे वाले रोड से जाएंगे, ऐसा एक हमारा सामान्यता ये होता, क्यों, वो सुखपूर्वक जाता है, वो प्रियत्व का मार्ग है, वो बहुत आसानी से, तो सब लोग उसी का वर्णन करते हैं। और जो प्रेय का है उसको भी चलना पड़ता है, वो भी जाता है, वो भी अपने आप को चलने वाला मानकर ही वहां पहुंचता है, दोनों के लिए मार्ग ही है। लेकिन ये जो है, ये प्रेय वाला जो है, उसका क्या है, धीरे धीरे केवल अपने मन को खुश करना, प्रसन्न करना, इस प्रकार का आचरण करते करते इसका जो पुरुषार्थ जो बनना चाहिए, इंद्रिय भोगों से विरत होकर दूर जाने की जो एक दृढ़ इच्छा बननी चाहिए वो बनती नहीं, इसलिए कहते हैं ये पुरुषार्थ से दूर जाता है। लेकिन ये जो प्रयासरत है, श्रेय चाहते है, नहीं ये कल्याण वाला है, इससे मेरा कल्याण होगा, दवा कड़वी है लेकिन मैं रोज लेते रहूंगा तो मेरी बीमारी दूर होगी, ऐसा करके जो कड़वी दवा का सेवन करता है उसे भी कड़वा लगता है, उसे भी बहुत समय तक कड़वी दवा खानी पड़ती है, लेकिन उसका कल्याण होता है, उसका कल्याण होता है, वो ऐसे ही शरीर को प्राप्त करता है कि जिस शरीर से वो और भी आगे का कुछ दूसरा बड़ा बड़ी उपलब्धि कर सके। लेकिन ये प्रेय वाला तो जिसने नष्ट कर दिया वो तो और अपने शरीर को और मन को नष्ट कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं ये दोनों भी बनते हैं, एक विद्या है एक अविद्या है, लेकिन दोनों ही बांधते ही है। लेकिन ये जो विद्या है, श्रेय जो है, वो लक्ष्य में ले जाने के लिए सहायता करती है, इसलिए वह शुभ है। फिर कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ संपरित्य विनिविक्त धीर, श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। देखिए सब कुछ जानकर भी मनुष्य को अच्छा बुरा समझने के बावजूद श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं, उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है, विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वरण करता है, परंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वरण करता है। अब उसको मूढ़ कहा है, माने मूढ़ बने जो मोहग्रस्त जीव है। मोहग्रस्त जीव को समझता नहीं किसमें मुझे किसमें मेरा लाभ है, किसमें मेरी वास्तविक मेरी हानि है और किसमें मेरा वास्तविक लाभ है। सही लाभ सही हानि का ज्ञान हमें अंदर अंदर सबको होता है, लेकिन हम में से बहुत कम में वो स्ट्रेंथ वो बल वो मन का निग्रह होता है कि ये मेरे लिए कल्याणकारक है, मैं यही करूंगा, इससे मेरा अकल्याण मेरा नुकसान होगा, ये मुझे सही मार्ग से दूर फेंक देगा, इसलिए मैं इसका ये नहीं करूंगा, नहीं लूंगा, नहीं स्वीकारूंगा। यहां तक पहुंचने को मनुष्य को बहुत समय लग जाता है, समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो अब तक प्रेय 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 प्रिय लगने वाली चीज को लेकर जीना सीखा है, उसी में रहना का अभ्यास हो गया है। ये अभ्यास से मनुष्य ने वो दुर्बलता को स्वीकार कर लिया है, दुर्बल हो गया है। इंद्रियों को ही सत्य मानकर हम जीते 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 इंद्रियों का ये जगत है, इंद्रियों का जो ये सृष्टि है, यही पक्की है, यही सत्य है, ये हमारा विश्वास हो गया है। शास्त्र कहता है कि ये इंद्रिय के परे वाली चीज कोई है, तुम इंद्रियों को छोड़ो, इंद्रिया और मन, ये स्थूल इंद्रिया सूक्ष्म इंद्रिया। सूक्ष्म इंद्रिया क्या कहती है? स्वर्गलोक। ये नचिकेता ने उसी के लिए तो दूसरा वर मांग लिया, उनके लिए जो सूक्ष्म इंद्रियों को मानते हैं, वो कहते हैं नहीं पृथ्वी के भोग हमें नहीं चाहिए, हमें वो स्वर्गलोक चाहिए। राक्षस लोग, रावण इतनी तपस्या की, कितने हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष आदि बड़े बड़े राक्षसों के उदाहरण आते हैं। सभी राक्षस लोग क्या करते हैं? इंद्रियों के सूक्ष्म भोग पाने के लिए ही सब तपस्या या सब अपनी बुद्धि लगा देते हैं। और हम देखिए ना, बाकी भारत को छोड़कर बाकी जगह जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी बुद्धि कहां जा रही है? इसी जगत में आज जो हम एक इतना सा मोबाइल हाथ में लेते हैं और उसको ये लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया आपके हाथ में आ जाती है, ये किसका इसका किसका आविष्कार है? ये मनुष्य की बुद्धि का ही है ना, ये मनुष्य की बुद्धि का आविष्कार है। क्या किया इसने? आपको सुख दिया है कि दुख दिया है? दिखने को सुख लगता है, लेकिन ये जो हमारा हमें दुख से हमें जो नष्ट कर रहा है, ये अविद्या है, ये है ना, ये अविद्या है। क्या हम इस अविद्या को छोड़ सकते हैं? सोचिए, इस अविद्या को छोड़ सकते हैं हम समझ कर भी? नहीं, बहुत उपयोगी लगती है, बहुत उपयोगी लगती है। और ये कहां इसका सब आविष्कार कहां हो रहा है? सब भारत को छोड़कर वहां हो रहा है। और भारत भी, इसलिए स्वामी जी ने पहले कहा था कि बाहर से आने वाला ज्ञान विज्ञान जो है, विज्ञान हमें चाहिए लेकिन विवेक के साथ उसका ग्रहण करना है। बाहर से जो कुछ भी आ रहा है वो आंख बंद करके नहीं लेना है। और ये विज्ञान जो है वो अथर्व वेद में है और भारद्वाज संहिता में, ये सब विज्ञान है। ये जो बाहर का जो विज्ञान है ना और ये जो आविष्कार हो रहे, ये सब भारद्वाज संहिता में है। हमारे यहां ऋषि मुनियों ने ये सब आविष्कार करके रखे थे, लेकिन इससे समाज का पतन होगा, मनुष्य का पतन होगा। मनुष्य हृदय से नहीं चलेगा, बुद्धि से चलेगा, भावना से नहीं कंट्रोल होगा, स्वार्थ से बुद्धि से प्रेरित होगा। ये जिसको गिराएगा उसका पतन होगा, अधप पतन होगा। उसका जो लक्ष्य है भाव से हृदय से, वो अपने लक्ष्य की ओर जाता है। केवल बुद्धि से तर्क से अगर वो व्यवहार करेगा तो उसके जीवन में केवल संशय और संशय से दुख। बुद्धि से व्यवहार करने वालों के क्या दुख ही दुख है, हृदय से व्यवहार करने वाले के जीवन में कुछ आनंद भी आता है, लेकिन बुद्धि से व्यवहार करने वालों के लिए केवल तर्क संशय और दुख वैसा हो जाएगा। इसलिए इस विद्या को हम हमारे समाज में नहीं प्रवेश करने देंगे। इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया था और कहते हैं ये जो भारद्वाज संहिता है, ये हमारे यहां जब आक्रमण हुए और नालंदा को जला दिया गया वगैरह, तो ये सब हमारे अच्छे अच्छे ग्रंथ सब बाहर चले गए। संस्कृत विद्या सीखने के लिए, संस्कृत से ये सब जो कर रहे हैं, एक तो मैंने ही एक ग्रंथ देखा है उज्जैन से आया था, वो ये पूरे बड़े बड़े प्रासाद कैसे बनाने, बड़े बड़े मंदिर कैसे बनाने, पूरा आर्किटेक्चर एक एक छोटी छोटी बात के लिए संस्कृत श्लोक है, वो बाइंड करके इंदुराश्रम में रखा है। ये सब हमारे यहाँ का विज्ञान है, सभी तरह ये हमने बाह्य जगत का विज्ञान भी हमारे यहाँ था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसे अपने यहां बैठने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को उसके सही लक्ष्य से, आत्म प्राप्ति, शाश्वत सुख के मार्ग से उसको दूर ले जाएगा, इसलिए हमारे यहां उसको बैठने नहीं दिया, और इसलिए बाहर के लोगों ने इसको अपनाया। अब विज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन सोच समझ कर, ये स्वामी जी ने कहा था वो हम भूल गए, और उन लोगों को जो समस्या आती थी, उन लोगों को जो दुख कष्ट भोगने पड़े हैं, और उनकी जो अवस्था हुई, वो अवस्था तक आने के लिए हम भी अभी उधर ही जा रहे हैं। जितने जल्दी संभल सके तो बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं संभले, नहीं है, तो ये जैसे उनको डुबाया, हमको भी डुबाएंगे करके। इसलिए कहते हैं कि विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को वर्ण करता है, परंतु मूढ़ योगक्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। योगक्षेम माने भोग प्राप्त करना और उसको बचा के रखना, प्राप्ति और उसकी रक्षा, योगक्षेम, ये उसी के चक्कर में उसकी बुद्धि लग जाती है। देखिए ना, हम जो अभी जब देख रहे हैं कि मनुष्य का लोभ कहां तक पहुंच गया है, जो उसके पास है उसका भोग कौन करेगा पता नहीं, फिर भी लालच, कौन करेगा भोग पता नहीं, कौन चोर खाएगा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उसका सदुपयोग नहीं करेगा मनुष्य, अधिक अधिक बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैसे कैसे उदाहरण पेपर में पढ़ने को मिलते, अरे बाबा कैसे, या इतनी बुद्धि क्यों चली जाती है, मूड, ऐसी मूड बुद्धि हो जाती है, माने मोहग्रस्त, सही गलत सोचने का विवेक खत्म हो गया है। तो ये प्रेय का मार्ग अपनाने से ऐसा होता है। फिर आगे, सत्वम प्रिया प्रिया प्रियान रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्त्राक्षी नैताम श्रुकाम वित्तम यीम वाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेत, अब उस तूने पुत्र वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, उस इस धन प्राया निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। माने यमराज कहते हैं कि देख, मेजोरिटी है बड़ी बड़ी तपस्या करके, जरा थोड़े से कुछ भोग और कुछ मिल गया कि वो साधक बड़ा मांगना भूल जाता है, बड़ा मांगना भूल जाता है। तो ये तूने, तू ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, तूने इनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है। बहुत कठिन है, आप लोगों ने कभी सुनी होगी घटना कि कैसे है? ये माया क्या पावरफुल है। एक घटना थोड़ी अलग प्रकार की है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि सूक्ष्म बुद्धि क्या होती है और कैसी होती है, और माया का आवरण या कैसा ये महापुरुष लोग कैसे ये करते हैं। एक बार आपने जाना होगा, बेलूर मठ में हम लोग जाते हैं, रोज प्रेसिडेंट महाराज को प्रणाम करते हैं। जब ब्रह्मानंद जी थे तब भी सब जाके उनको ऐसे प्रणाम करते थे। ब्रह्मानंद जी को तो बहुत लोग, भक्त लोग कुछ 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 क्या क्या गिफ्ट देते थे, बहुत उनके पास कपड़े, क्या वस्तु वस्तु रहती थी बहुत सी वो सब। एक दिन उन्होंने क्या किया, देखो किसी के साथ दूसरी बातें हुई थी, ब्रह्मानंद जी बोले ठीक है, देखो किसी ने कहा कि महाराज आपने हमको हमको भी तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान भी ईश्वर में डूब जाना चाहते हैं। अरे नहीं चाहते तुम, ब्रह्मानंद जी कह रहे, तो बोले नहीं नहीं हम चाहते, इसलिए तो आए हैं। बोले तुम आए जरूर हो, तुम चाहते हो, ये भी ठीक है, लेकिन ठीक ठीक वही नहीं चाहते। और ब्रह्मानंद जी बोले ठीक है, अच्छा तुम देखना चाहते हो, दिखा दूंगा तुमको। और फिर उन्होंने उनको बता के उनके पास जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी सब ऐसी सामने जमा के रख दी, सब सामने चीजें जमा के रख दी, और उसके कहा चुप रहना, तुम कुछ नहीं बोलना, मेरे सब पास खड़े रहो। अब ये किसको लेकर हुआ ना, लेकिन ये घटना है, किताब में भी छपी है ये घटना। और सब लोग आके प्रणाम करते तो देखा, समझे महाराज ने आज ये यहाँ बाजार क्यों बैठा दिया है, लेकिन महाराज ने बाजार बिठा कर महाराज बैठे थे। और फिर प्रणाम करके आज बोले बोल क्या चाहिए, बोलते ये ले जाओ। ऐसा करते करते प्रणाम किया, बोल क्या चाहते हो, तो उसको लगता कि इसमें से ही कोई पूछ रहे हैं, तो बोलते ये चाहिए ले जाओ। ऐसा करते जितने जो 5-7-8-10, उस जमाने में इतने थोड़े लोग, कम 5-7-8-10 जो कोई आए, 15-10-15, उन्होंने उसमें से जो कुछ था एक मांग लिया। ब्रह्मानंद जी पूछ रहे हैं, अब ब्रह्मानंद जी जानते हैं ब्रह्मानंद जी क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं दे सकते, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि इनको छोड़कर ब्रह्मानंद जी से ये चीज क्या लूं मैं। ब्रह्मानंद जी से ये चीज क्या लू मैं, ब्रह्मानंद जी को मैं मुक्ति मांग सकता हूं, मुक्ति दीजिए, या मुझे खूब ध्यान में गढ़िया गहरा ध्यान लगेगा, ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए, ऐसा किसी ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो सामने देखकर उनके मन में वो भूल गए कि वो ये भी दे सकते हैं। अब देखिए इनकी ये अवस्था है, तो बाकी ये राक्षस लोग जो इतनी तपस्या करके बोल क्या चाहते हो, बोलने से क्या बोलता है, अमर अमरत्व दो, या वो शक्ति दो, इंद्रपद दो, चंद्रपद दो, यही मांग लेते हैं। कहने का तात्पर्य इसलिए बोल रहे कि वो असारत्व का चिंतन करने, तूने जो अभी अपनी अवस्था का दर्शाई है, ये बड़ी रेयर चीज है, इसलिए वो यमराज प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं दूर मेते विप्रते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञातां विद्याभिसिनम नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपंत। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्या अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने नहीं लुभाया। ये श्रेय प्रेय वाली जो है, जो विद्या की तरफ श्रेय ले जाता है, ये श्रेय, ये वास्तविक बहुत कम लोग इसकी तरफ जा सकते हैं, बहुत कम चाहते हैं, बाकी सब वो अविद्या के आकर्षण में उधर चले जाते हैं, स्वर्ग आदि भोग मांग लेते हैं। और लेकिन तू विद्या अभिलाषी है, अविद्या अभिलाषी नहीं है, इसीलिए तुमने अपने विवेक से इसी को मांगा है और तुम इससे लुभाए नहीं गए हो। और बोलते हैं जो अविद्या चाहते हैं उनकी क्या अवस्था होती है, और तुमने कैसे उसको लांघा है, ट्रांसेंड कर दिया है, क्योंकि तुमने अपना विवेक जो यहां प्रकट किया है अभी, ये विवेक से तुमने क्या प्राप्त किया है? कहते हैं कि ये दूसरे लोग जो जिसमें जैसे, और दूसरे माने क्या, सभी जीव कब से इसमें पड़े हैं, कई कल्प कोटि शते, शंकराचार्य कहते हैं कई कल्पों से जीव इस माया में ही पड़ा है, यह बेहतर, इससे यह बेटर, इससे यह बेटर, इससे यह बेटर, इस प्रकार के विवेक और ये वस्तु इंद्रियों का विषय, इसी में मनुष्य उलझा हुआ है। कहते हैं इनकी क्या दुर्दशा होती है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंडम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। बोलते ये क्या है, ये जो अविद्या में रहते हैं, जो प्रेय का ही मार्ग पकड़ के रहते हैं, इनका ये अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप को बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए, अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। देखिए जिसको हम ज्ञान मानते हैं इस जगत में जिसे हम ज्ञान मानते हैं, इनकी परिणति क्या है? इसीलिए कभी कभी हम लोगों को ना बताना पड़ता है कि महापुरुष हम किसको कहते हैं। महापुरुष हम उसको कहते हैं जो इस माया के परे गया है। इसलिए हम ठाकुर मां स्वामी जी या ऐसे शंकराचार्य आचार्य शंकर भगवान बुद्ध जिन्होंने इस माया के परे की प्राप्ति की है वे महापुरुष हैं। जो देश प्रेमी देशभक्त वे भी बड़े हैं, प्रणम्य है, आदर करने योग्य है जरूर, लेकिन उनकी कोटि अलग है। वे इस माया के अंदर ही है, माया के अंदर ही है। देश प्रेम आदि आपको माया से मुक्त नहीं करता, हाँ आपको एक विशेष अधिकार देता है, आपको और उच्च अधिकार देके उच्च लोगों के भोगों के लिए योग्य बनाता है। हाँ देश प्रेम वाले आप लोगों ने सुना होगा वो घटना, वो जो निर्जा शर्मा जिसने वो कराची में वो किया था, उसके बारे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल बाद में पब्लिश हुआ था। स्वर्ग में गई थी वो उसके मृत्यु के बाद, और कैसे अजीब प्रकार से वो आर्टिकल आया था, लेकिन सत्य लगा उसमें, क्योंकि सब फैक्ट्स दिए थे उसमें कि उसने क्या कहा। दो लोगों के उसने जाकर बताया कि मैं स्वर्ग में हूं, मैं आनंद में हूं, मैंने जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हुई इससे मेरा सम्मान है, क्योंकि त्याग, उसने दूसरों के लिए बलिदान दे दिया अपना। महाभारत में हम पढ़ते हैं महाभारत के सब योद्धा जो गए वो सब स्वर्ग लोक में गए थे, क्यों? क्योंकि राष्ट्र के लिए जिस प्रकार जाते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन ये जो साधक है जो मृत्यु को जानना चाहता है उसके लिए ये मार्ग भी श्रेष्ठ नहीं है, इससे परे वाला। इसलिए यहां इन्होंने कहा कि ये सब अविद्या का ही मार्ग है, और इसमें कितना भी बड़ा कितना भी लुभावना दिखे, वो फिर से आपको एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, तीसरे लोक से मृत्यु लोक, मृत्यु लोक से पशु लोक, पशु लोक से पक्षी लोक, कहां घुमाएगा गारंटी नहीं, कहां घुमाएगा गारंटी नहीं। यही सब लेके लेके रहना पड़ता है ऐसा। और यहां ये कैसा है, मैंने कभी कभी हम वो ये ज्ञान के लिए हम कहते ना कि हम ये जानते हैं, आओ हम तुम्हें बताएंगे, ऐसा कैसे एक अंधा दूसरे को कहता है चल मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं, और दोनों गड्ढे में गिरते, क्योंकि दोनों इस प्रकार वो बार बार जन्म मृत्यु वाले चक्र में दोनों पड़ते हैं, इसलिए दोनों को अंधा कहा है। गुरु भी अंधा है और चेला भी अंधा है। इतना कठिन है ये, लेकिन सब लोग इसी को चाहते हैं। फिर मूर्ता के कारण क्या होता है, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते मे। धन के मोह से अंधे हुए प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता, यह लोक है परलोक है ही नहीं, ऐसा मानने वाला पुरुष बार बार मुझे वश, मुझे मेरे, मुझे प्राप्त होता है, मेरे वश को प्राप्त होता है, माने मृत्यु कहता है कि मेरे वश में आ जाता है, मेरे वश में आ जाता है। इस प्रकार वो आप लोगों ने कभी वो टॉलस्टॉय की कहानी सुनी होगी, कैसे लोगों को इसका भान नहीं रहता। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा संक्षेप में, एक ये होता है दूत, देवदूत होता है, वो एक बार पृथ्वी पर किसी के यहां रहता है, और उसे सब वो सब जानता है कि कैसे मृत्यु होती है, मनुष्य का जीवन कैसे अनित्य है सब ये। और जहां वो रहता है वहां एक बार ऐसा अभिमानी पुरुष आता है, और वहां के वो जो यजमान वो घर का जो मालिक होता है उसके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार करके, अज्ञान के कारण अभिमान के कारण व्यवहार करता है, और ये जो देवदूत उसके घर में रहता है वो देख के केवल मुस्कुराते रहता है, मुस्कुराते रहता है। अब ये इसको लगता है कि ये मुझे गाली दे रहा है, ऐसा ऐसा उसका व्यवहार हो रहा है और ये हंस रहा है, और फिर वो एक ऐसा कुछ काम कर देता है जिससे कि वो मनुष्य और नाराज हो जाएगा और गाली देगा, क्योंकि उसने धमका के गया था, बोले तो और तो मार डालेगा मुझे, फिर भी तुमने ऐसा काम क्यों किया। तब उससे कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ ही क्षणों में दो घंटे के बाद कोई एक मनुष्य आता है और संदेश देता है कि अरे अभी जो आपके पास आया था, आपको धमका के गया और आपको ऐसा करो वैसा करो बोल के गया, वो मर गया। बाद में ये जो देवदूत इनके घर में था वो कहता है मैंने देखा कि वो जब आपको धमका रहा था, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तब मेरा एक दोस्त उसके पीछे खड़ा था, मैंने समझ लिया कि ये अगला दिन देखने वाला नहीं है, इसलिए मैं हंस रहा था, मुझे मालूम था कि ये जीने वाला नहीं है ज्यादा, ये जो कुछ बोल के गया इसको कोई मतलब नहीं। देखिए ऐसा होता है, लेकिन ये जो है मनुष्य जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, और ये बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते रहता है इस प्रकार के अभिमान अहंकार के वश में जीने के कारण। आगे कहते हैं श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्य शुण्वन्तोपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है, उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। यहां पर यमराज और नचिकेता दोनों की स्तुति है। यमराज आश्चर्य वो जानने वाले, मृत्यु के मालिक है और वो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे कहां मिलेंगे। नचिकेता ने यह समझ लिया है कि ऐसे बोलने वाला कहां मिलता है। ये जो गीता में भी जो श्लोक आया है ना दूसरे अध्याय में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवत वचनम अन्य श्रुणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। सुनकर भी कुछ नहीं समझता, इसको जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, हम बोलते लेकिन क्या समझता है, कौन किसको जलाता है, कौन किसको काट नहीं सकता। ये आत्मा के बारे में एक धारणा जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं, मन की पहुंच नहीं, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं है इसके पीछे, परंतु जो अंतकरण बना हुआ है, जो पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेंद्रिया बना हुआ है, जो बाद में पंच महाभूत होकर इस स्थूल सृष्टि को व्याप्त करके रखा है, ऐसा जो है इन तीनों के परे, देखिए इसकी धारणा भी बहुत कठिन है, अब आगे बताएंगे ये कैसे करके। तो इसकी धारणा करने की भी अगर हम थोड़ी कोशिश करते हैं तो मन में एक अंतर्मुखता आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इसकी चिंता करने वाला भी आश्चर्यवत है, इसको सुनने वाला भी आश्चर्यवत कह रहे हैं कि बहुत लोगों को तो इसके बारे में सुनने को भी नहीं मिलता, अब तुम कम से कम ये ज्ञान मांग रहे हो। नचिकेता यमराज को जाके इसका ज्ञान मांग रहा है, कहता कि तुम मुझे सुनाओ बताओ तो तुम भी आश्चर्यवत हो। यमराज तो है ऐसे, हरि महाराज अपने तुरियानंद जी बोलते थे कि अरे कौन चाहता है, हम तो देने के लिए तैयार है, तुम चाहते कहां हो। वो साधु ब्रह्मचारियों को भक्तों को कहते थे उनके पास जो आते थे, तुम चाहते कहां हो, तुमको तो सब कुछ बना के मुंह के पास ले जाओ फिर भी तुम खाओगे नहीं। हाँ तुरियानंद जी ऐसा कहते हैं, क्यों, क्योंकि बड़ी दुर्लभ बात है ये, बड़ी कठिन बात है इसको ग्रहण कर सकना या इसके प्रति आकर्षण महसूस होना, यही साधना से यही आता है। और ये बार बार ईश्वर को जब प्रार्थना करते, प्रभु नहीं चाहिए पुनर्जन्म, नहीं चाहिए जन्म, नहीं चाहिए अब मुझे नहीं आना पृथ्वी पर, आज मुझे मुक्ति चाहिए, ये हमको बोलना पड़ेगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक बार भूतेशानंद जी ने सबको बोला था, गंभीर गए, सब प्रणाम करने जाते थे भूतेशानंद जी को, ऐसे गंभीर बैठे थे, हमेशा तो बहुत आनंद करते थे मजाक करते थे, उस दिन गंभीर बैठे थे और जब प्रणाम करते बोले कुछ बात नहीं कर रहे, किसी की ताकत नहीं हो रही उनको कुछ बोलने की, क्योंकि महाराज खुद स्वयं गंभीर है, सब चुप होके बैठे रहे। रोज बेलूर मठ में प्रेसिडेंट महाराज को रोज प्रणाम होता है, भूतेशानंद जी के समय तो बड़े आनंद की बात थी, सब लोग जाते थे खड़े हो जाते थे, महाराज 5-10 मिनट कुछ बोलते थे फिर सब लोग निकल जाते थे, उस दिन महाराज चुप थे गंभीर। और बाद में जब सब लोगों का प्रणाम हो गया, कोई उनको माने बोलने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहा है, ऐसे में कि वो लोगों ने, दूसरे साधुओं ने, वो सेवक महाराज थे सुप्रभात महाराज, उनको इशारा किया कि अरे तुम कुछ जरा महाराज को ये छेड़ो, तो उन्होंने कुछ तो भी बोला महाराज को बुलवाने के लिए, महाराज का मन कहीं और था, एकदम सबको बोलते हैं बोलो चाय बोना चाय बोना चाय बोना, बोलो माने मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बार बार बोलो, क्यों कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या। जब मन की अवस्था ऐसी हो जाती है कि आपको इस जगत का दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन, तब कहीं इस आत्मा की ये सब इंद्रिय जाल के पीछे जो सत्य है उसकी धारणा करने का कुछ कुछ आभास कुछ मिलता है, अरे वो ऐसा हो सकता है, मनुष्य चुप हो जाता है, कैसा हो सकता है। आज हमें मैं तू विषय वस्तु इंद्रिय ग्राह्य विषय भोक्ता भोग्य, ये अज्ञान में भोक्ता भोग्य कॉन्शियसनेस, आई एम एंजॉयर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, इस प्रकार मैं तू में से जगत को देखने की, जगत को अनुभव करने का हमारा अनुभव हो गया, हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, और उसमें से यह चाहूंगा यह नहीं चाहूंगा, यह ग्रहण करूंगा यह छोड़ूंगा, इस प्रकार को वस्तु को लेकर ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है, जीवन क्या, जीवन के बाद जीवन। लेकिन इसलिए उन्होंने उस दिन महाराज की कुछ विशेष रहा होगा सबसे ऐसा बुलवाया, क्यों, कितना कठिन है ये जो श्लोक है ये बताने के लिए कि ये ज्ञान कितना रेयर है, रेयर रेयर रेयर। इसलिए श्री राम कृष्ण देव नरेंद्र को देख के खुश हो गए थे, नरेंद्र जैसा कोई नहीं, नरेंद्र 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 को देख के ही समाधि लग जाती थी, क्यों, क्योंकि ऐसा आश्चर्यवत वो लब्धा था, ग्रहण करने वाला नरेंद्र था जो ग्रहण कर सकता है, और किया भी, ठाकुर के सामने नरेंद्र को निर्विकल समाधि भी मिल गई थी, और किसी को नहीं मिली, दूसरी समाधि लगी होगी भले ही, भाव समाधि वगैरह हुई बहुत लोगों को, लेकिन नरेंद्र की जो समाधि थी वो अलग थी, इसलिए ठाकुर नरेंद्र को जितना चाहते थे, क्यों, वे दोनों आश्चर्यवत है, स्वामी जी के विवेक ने उनको वही समझाया, ठाकुर कब तक रहेंगे पता नहीं, ज्ञान प्राप्त कर लो, इसलिए भागे थे, तो ये ऐसे कोटि के थे। न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाणात्। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विदनीय है। अब बताते हैं कि यह जो ज्ञान तुम जो जानना चाहते हो, जिसके बारे में तुम समझना चाहते हो, ये कितना आश्चर्यवत तो है ज्ञान। और इसके ज्ञान की इसका स्वभाव, इसका नेचर क्या है, कैसा है? ये जो सही ढंग से जानता है वही बता सकता है। और ये अस्ति नास्ति इसके परे वाला खेल है। ये ठाकुर बोलते ना, अरे वो है भी नहीं भी, उसके बारे में क्या बोलोगे? वो अस्ति नास्ति के परे है, माने उसकी धारणा करना बहुत सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। वो श्लोक भी आगे आएगा कि ये इसको समझना कितना कठिन है, क्योंकि जहां मैं तू खत्म है, मैं भी नहीं है तू भी नहीं है, फिर भी जाना जाता है। कैसे आज हम इस बुद्धि से समझ ही नहीं सकते उसको? हाँ, इस बुद्धि से इसकी थोड़ी एक धारणा की जा सकती है जरूर, और इसकी धारणा करते करते, चिंतन करते करते एक समझ आती है। उस समझ से ये देखा समझ सकते हैं हम, कल्पना से हम कर सकते हैं, कल्पना से हम देख सकते हैं कि ये सूर्य में अगर हम चले जाए, अगर हम सूर्य में चले जाए, कल्पना कीजिए कि हम सूर्य में चले जाए और हम सूर्य रूप हो जाते हैं, और फिर सूर्य में जाकर सूर्य रूप होकर अगर हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो सूर्य क्या देखेगा? सूर्य देखेगा कि मैं ही तो हूं पृथ्वी, और क्या है यहां? हमारे यहां जो प्राण बैठा है टेम्परेचर होके, वो चला गया कि हम बोलते हम मर गए, प्राण चला गया। और वो प्राण कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो हम जब सूर्य में बैठ जाएंगे और देखेंगे सब तरफ, पृथ्वी तरफ, तो हम क्या देखेंगे? हमको हम ही दिखेंगे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ठाकुर क्या कहते हैं? एक उदाहरण दिया, ये अवस्था कैसी है, इसको क्यों नहीं धारण किया जा सकता, या क्यों समझने में दिक्कत आती है? सूर्य के जो प्रतिबिंब से हम समझना चाहते हैं, जब तक हम 50 घड़े हैं और 50 प्रतिबिंब सूर्य है, 49 को तोड़ दिया तो बोलते हैं कि एक आकाश का सूर्य है और एक प्रतिबिंब सूर्य है। और जब वो एक प्रतिबिंब को घड़े को भी हम तोड़ देंगे, फिर ठाकुर ने पूछा कि अब क्या है? तो बोले अब कोई नहीं, अब आकाश का सूर्य है। बोले नहीं, आकाश का सूर्य कौन बोलेगा? जो प्रतिबिंब है वो बोलेगा। हमारे यहां प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सूर्य, जब एक भी प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? जो है सो है, एक भी नहीं बोला जा सकता। जब दो रहेगा तब एक बोलेंगे, लेकिन जब वो एक प्रतिबिंब भी तोड़ डालेंगे तो रहेगा क्या? जो है सो है, कौन बोलेगा? अब भी बड़ा कठिन है इसको समझना, लेकिन वो जो अस्तित्व है एकत्व का, इसलिए कहते हैं ये जो अभेद, अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में, जिसकी अभेद दृष्टि है, जो अभेद दृष्टि में पहुंचा है, वो कोई इक्का दुक्का होता है। इसलिए उसे इस प्रकार उसकी ये की थी, मैंने स्तुति की थी। नैषा तर्केण अनुमतिरापनेया प्रोक्तान्ने नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वमाप सत्य धृतिर्बतासी त्वादृङ्नो भूयान नचिकेतः प्रष्टा। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। जैसे ठाकुर ने कहा नरेंद्र आने से आनंद हुआ, नरेंद्र जैसा एक धारण करने वाला, वैसे यमराज को नचिकेता जैसा धीर स्थिर और सूक्ष्म बुद्धि विवेक वाला ये ज्ञान प्राप्ति के लिए आया, ये जानकर बड़े प्रसन्न हो गए। और बोलते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं रहते, बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग तो केवल अपने कर्मफल में उलझे रहते हैं, ये कर्म से ये मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, और ये मिलता है वो कैसा है, उसमें कोई दम नहीं है, वो अनित्य है, वो सब नष्ट होने वाला है। तो लेकिन तुम उस तरफ नहीं गए, ये समझाने के लिए बोलते हैं, जाना मेहम शेवधीरित्य नित्यम नहीं ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत् ततो मया नाचिकेताश्चितोग्नि अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। और खुद के बारे में बता रहे, मैं यह जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया, उन अनित्य पदार्थों से ही मैं यमपद को प्राप्त हुआ हूं। बोलते देखो ये अनित्य क्यों कहा, क्योंकि जो भी हम प्राप्त करेंगे वो कैसा रहेगा, मैंने इसे प्राप्त किया। ये दोनों मिथ्या है, दोनों अज्ञान है, क्योंकि जब तक द्वैत रहेगा, मैं तू रहेगा, तब तक प्रकृति है, इंद्रिया है, प्राप्त करने वाला अलग है, प्राप्त होने वाली चीज अलग है, और ये कैसा है, अभेद नहीं, ये भेद आ गया। और दो आ गया, क्या मैं स्वामी जी कहते ना कि तुम मुझे दो दो मैं तुम्हें करोड़ों देता हूं, एक बार दो हो गया कि वैसे ही है, ये सृष्टि ऐसी आई है। ये जो सृष्टि आई है ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से फिर सत्व रजतम तीन गुण, और फिर यहां तक के उसका पूरा विस्तार हो गया स्थूल सृष्टि तक। सत्व गुण से एक अलग विशिष्ट सृष्टि उत्पन्न हुई, रजोगुण से विशिष्ट उत्पन्न हुआ, तमोगुण से विशिष्ट, इस प्रकार ये हो गया। अब हमें यहां से सबको इस प्रकार विड्रॉ करते 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 वो महत्तत्व तक जाना है। महत्तत्व से फिर वो जहां अभिन्न सब एकत्व है, जहां वो व्यक्त ही नहीं हुआ उस अव्यक्त तक पहुंचना है। तो ये वहां तक अव्यक्त तक पहुंचना सब सामान्य जीवों के लिए नहीं है। वो सामान्य जीवों के लिए तो बस अवतार को जानना इतना ही काफी है। अवतार तक पहुंचना माने सगुण ब्रह्म की धारणा कर सकना, इनफ है। ठाकुर बार बार बोलते ना, अरे तुम्हारे लिए इतना नहीं, तुम बस इतना ही करो, इतना काफी है। क्यों? क्योंकि ये इतने, इसके लिए जिस प्रकार की बुद्धि और धारणा शक्ति लगती है वो सामान्य जीव में नहीं हो सकती। इसीलिए ये महापुरुष ठाकुर अपने साथ सब नित्य सिद्ध ईश्वर कोटि जीवन मुक्त ऐसे लोगों को लेके आए थे। क्यों? क्योंकि वही लोग धारण कर सके इतनी साधना करने के बाद। सामान्य लोग, सामान्य हम जैसे सामान्य लोग रहते तो ठाकुर का काम अब तक चलता ही नहीं। ठाकुर का काम अब तक चलना, चलाने के लिए ही उन्होंने विवेकानंद जैसे ईश्वर कोटि जीवन मुक्त सब जो 16 जो शिष्य लाए सब मुक्त पुरुष थे वे, ऐसे लोगों को लेके आए थे। क्यों? ये इतनी गहन और ऐसी बात है, इसलिए ये कह रहे कि ये हम लोग सब कर्मफल के चक्कर में, हमारा कर्मफल के चक्कर में जन्म होता है। ये लोग कर्मफल से जन्म नहीं हुआ इनका, इनका विशिष्ट प्रयोजन से ईश्वर ईश्वर इच्छा से जन्म होता है, जन्म हुआ इनका, इसलिए वो काम करके बिना बंधन के आए और बिना बंधन के चले गए। बाकी लोगों का क्या होता है, ये सब यहां तो यम पद जो है वो भी मुझे, मैंने भी त्रिनाचिकेत यज्ञ किया था और मैं यम पद को प्राप्त हुआ हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया मैंने, वो संपन्न करके यमराज कहते हैं। देवता भी क्या है, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करने से इस प्रकार के देवताओं के पद मिल जाते हैं, स्वामी जी ने कर्मयोग में सब कहा है। ये नचिकेता के त्याग की फिर प्रशंसा करते हैं कि कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतोर अंत्यम अभयस्य पारम स्तोम महद उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अति त्राक्षी। हे नचिकेत, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया है। माने नचिकेता ने ये पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक के सब श्रेष्ठ भोग त्याग दिए हैं। अब ये जो हम सुनते हैं कि जब एक अवस्था आती है जो अणिमादि, जो गरीब अणिमा लघुमा गरिमा, ये जब बढ़िया सिद्धियां हैं बड़ी बड़ी जो ये सृष्टि में ही है, जो अज्ञान में ही है, इसलिए ठाकुर ने स्वामी जी को कहा था जब तक सिद्धियां है ये अणिमा गरिमा, ये अष्ट सिद्धि जब तक है तब तक मैं नहीं मिलूंगा, ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक। स्वामी जी ने कहा फिर मुझे नहीं चाहिए, ठाकुर दे रहे थे उनको, क्योंकि माने अज्ञान में रहोगे तुम। स्वामी जी ने साथ ठाकुर ने कहा लेकिन ये अणिमादी सिद्धियों से तुम तो प्रचार के लिए तुम्हें उपयोगी होगा, तो बोले प्रचार बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे इसके पीछे जो सत्य है वो जानने दो। बोले ये जानोगे तो सत्य नहीं जान सकोगे, क्योंकि ये सिद्धियां अगर जब करके हमारे यहां सिद्धियों को ठाकुर इतना त्याज जवाना, जैसे सिद्धि आती आपको इस जगत में ही कुछ ना कुछ चमत्कार करने की इच्छा होती है, आपका जो कुछ मिला नहीं मिला उसको अजमाने का आपको मोह हो जाता है और फिर आप अज्ञान में ही अटक जाते हो, इसलिए इसको त्याग जमाना गया है। और कहते हैं कि तूने इसको भी धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो उसका फल कैसा है, तम दूरदर्शम गुणम अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाती। उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। माने उसका ये बता रहे कि उसकी विशेषता क्या है, जो यहाँ गूढ़, यहाँ ये जो कहते हैं ये जो हृदय की गुफा है, बड़ी गहन गूढ़ गुफा है, और यहाँ ही वास्तविक जो बुद्धिमान पुरुष होता है, ये यहाँ इसमें वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जो इस गुहा में प्रवेश करता है, यही उसकी प्राप्ति होती है। और उसकी जिसको उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसके जीवन में क्या होता है, हर्ष और शोक, सुख और दुख। हम क्या होता है, सुख से हर्षित हो जाते हैं और दुख से म्लान हो जाते हैं, ये दोनों निकल जाता है। हर्ष से सुख भी, सुख से हर्ष भी नहीं होता और दुख से हम म्लान भी नहीं होते। हम दोनों परिस्थिति में स्थिर वैसे रहते, देखते हैं, केवल एक साक्षी देखते हैं, क्योंकि सुख दुख ये सब शरीर और मन के लिए है। शरीर और मन को लेकर सुख दुख है, और जब तक हम शरीर और मन के साथ एक होकर जुड़ के रहते हैं, तब तक ये सुख दुख हमें हिलाते रहता है। लेकिन जब इस आत्मा को, इस अभेद को हम देख लेते हैं या समझ जाते हैं उसको, तब ये सुख दुख से परे हो जाते हैं। फिर हमें सुख भी खुश नहीं करता, आनंदित नहीं कर सकता, और दुख हमें दुखी नहीं कर सकता, हमें दोनों हिलाते नहीं है। जब तक हलचल है तब तक बंधन है, सुख भी हिलाता है दुख भी हिलाता है। और ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है कि ये सुख भी नहीं लेता दुख भी नहीं लेता। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है, अगर तुम सुख लोगे तो तुम्हें दुख लेना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे पास सुख आता है तो उसके सिर में दुख का मुकुट रहता है, लेकिन तुम दुख के मुकुट को देखते नहीं हो और सुख को तुम अपने गले लगाते हो। सुख को गले लगाते हो तो दुख को भी तुमने गले लगाया है, इसलिए सुख भी मत लो दुख भी मत लो, ऐसा ये जगत है। आगे कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीय धर्म्यम अनुमेतम आप्य समोदते मोदनीय हि लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेतसं मन्ये। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेता मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। अब ये जो आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली भांति ग्रहण कर, आत्मा और देह का ये जो विवेक है, ये जो विवेक जिसके इसको आ जाता है, वो विवेक इतना आनंद देता है। ये जो अपने यहां जो पांच कोशों की कल्पना की गई है ना, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये जो अंतिम कोश जो आनंदमय कोश है वो केवल आनंद है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जहां हम विषय विषय संबंधों से रहित ऐसे जहां वहां पहुंचते हैं, जगह पहुंचते हैं, वहां कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आज हमें विषय का आनंद लेने की आदत पड़ गई है, तो हमें लगता है जहां विषय नहीं कुछ नहीं वहां आनंद क्या होगा। हम ये नहीं समझ सकते कि अरे वहां आनंद है, इसलिए वही आनंद इन विषयों में आया है, वही आनंद यहां से हमें मिल रहा है, वो आनंद हम जब, लेकिन ये सब छोड़ देते हैं और केवल वो आनंद स्वरूप में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम उस आनंद में, इसलिए वो आनंदमय कोश कोई त्यागना नहीं चाहता। कहते हैं आनंदमय कोश का जो बंधन है वो और भी सूक्ष्म है और बड़ा सूक्ष्म है, ऐसा तीव्र है कि वो आनंदमय कोश से उठना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान का आनंद, वो कभी कभी हम लोग ध्यान का आनंद छोड़ना नहीं चाहते, जब ध्यान में मन लग जाता है उठना नहीं चाहते, और अगर कोई उस समय हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो हमें गुस्सा आता है, इतना बढ़िया ध्यान जम रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, तुमने हमको उठा दिया, या फोन की घंटी बज जाती है तो उस समय हमें धीरज चाहिए, फोन जाए जहन्नुम में, हमने उठाएंगे, अभी ध्यान अच्छा लग रहा है तो ध्यान ही लेके रहेंगे, अच्छा मन एकाग्र हो रहा है तो फोन वाला करना है तो करेगा, फिर से नहीं तो गया, हम बस इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी परीक्षा होती है ऐसे समय, क्योंकि ये जो आनंद है ना, ये सूक्ष्म आनंद, ऐसे ही हमें धीरे धीरे त्यागना पड़ेगा इसी इधर के, ये तो ये जो कहते हैं ये सुनकर इसका बड़ा आनंद है, ये बता रहे, और कहते हैं कि अभी तुम इसके लिए योग्य हो गए हो मेरे लिए, मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए वहां का वो द्वार खुल गया है। अब कहते हैं वो कैसी वस्तु है जिसको तुम जानना चाहते हो, अभी जैसे हमने कल्पना की थी कि जब हम सूर्य में पहुंच जाएंगे, सूर्य में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य ही तो सब कुछ बना है, सूर्य दिखने से क्या दिखेगा, अरे मैं ही तो पृथ्वी बना हूं। सूर्य की पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई, सूर्य से हुई। पृथ्वी पर जितनी विविधता देखते हैं हम, वो क्या है, बस मॉडिफिकेशन है पंचभूतों के, और पंचभूतों के मॉडिफिकेशन है पृथ्वी पर, और वो पृथ्वी भी सूर्य ही बना है। तो हम जब सूर्य में चले जाएंगे और सूर्य रूप हो जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे, बाकी देखेंगे, देखिएगा अरे मैं ही तो सब कुछ हूं, माने क्या हो जाएगा, ये जो मैं का ज्ञान है वो सब में फैल जाएगा, मैं ही सर्वातीत हूं, मैं ही सर्वगत हूं, ये दिख जाएगा। इसलिए बोलते इस प्रकार का अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृता कृतात अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। ये इन्होंने कहा इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो धर्म से पृथक अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है, और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहो। अब ये जो है नचिकेता की धारणा शक्ति बड़ी जबरदस्त थी, समझ गया कि आप तो देख रहे सब, ये इन्होंने कहा आप ही उसको देख रहे हो, वो आप मुझे बताइए। अब इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य विशेषणों को बतलाने की इच्छा से यमराज ने कहा, क्या कहा, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इति ओम एतत्। क्या कहते हैं कि सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं, ओम यही वह पद है, ओम यही वह पद है। माने वो अवस्था या वस्तु या पद वो क्या है, जो ये भी नहीं वो भी नहीं, विषय भी नहीं, विषय को भोगने वाला भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, भोग्य भी नहीं, जहां पूरा अभेद हो जाता है, वो क्या है, वो ये ओम का पद है। एतद्वे वाक्षरम ब्रह्म, एतद्वे वाक्षरम परम, एतद्वे वाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। यहां तात्पर्य ओम जो है, ये ओम में है अ ऊ म, और ये अ ऊ म ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन को लक्षित होते हैं, और ये ओम की साधना जो जैसा करता है, माने इस पृथ्वी को ध्यान में रखकर मन में रखकर अगर वो अभाव को लक्ष्य करके वो साधना करता है तो वो उसको प्राप्त होता है। इसलिए अपने यहां विश्व विराट की कल्पना कही गई है, विश्व विराट और हिरण्यगर्भ तेजस और प्राज्ञ और ईश्वर, ऐसा व्यष्टि और समष्टि, ये तीनों अवस्था है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, ऐसा किया गया, और ये अ ऊ म से हमें इस प्रकार की तीनों की प्राप्ति होती है। जो जिसका भाव रखकर इसकी साधना करेगा इस अक्षर ब्रह्म की, वो उसको प्राप्त होता है, ये इन्होंने यहां कहा। फिर आगे कहते हैं, एतद् आलंबनम श्रेष्ठम, एतद् आलंबनम परम, एतद् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महियसे। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है, इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। अब वहां जाने का कुछ तो आलंबन चाहिए, कैसे जाएंगे, जाने के लिए मार्ग क्या है, तो ये मार्ग माने आलंबन किसको पकड़े, ओम को पकड़ो, ओम को पकड़कर हम उस वहां तक पहुंच सकते हैं, उस तत्व तक पहुंच सकते हैं, उस पद तक पहुंच सकते हैं, ये यहां कह रहे हैं। और फिर कहते हैं, न जायते मृते वा विपश्चिन्नाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है, न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है, यह अजन्मा नित्य हमेशा वर्तमान शाश्वत सर्वदा रहने वाला और पुरातन है, तथा शरीर के मारे जाने पर भी वह स्वयं नहीं मरता। देखो मृत्यु के बाद क्या रहता है क्या नहीं रहता है उस पद के बारे में समझा रहे हैं। तो पहले तुमने ये नहीं मांगा, तुमने ये नहीं मांगा, तुमने इसको नहीं चाहा, तुमने उसको नहीं चाहा, तुमने ऐसा चाहा है जिससे ऐसा होता है वैसा, वो क्या है, वो कैसे पाया जाता है, किससे पाया जाता है, ये बताया ओंकार तक लेके आए। और फिर ओंकार से कहते हैं कि जो पाया जाता है वो पद कैसा है, अजन्मा है, सदा रहने वाला है, नित्य है, और वो शाश्वत, और वो शरीर के मरने से वो कभी नहीं मरता, और वो है, ऐसा एक पद है, ऐसा एक अवस्था बोलो, या उसको पद करके यहां चिन्हित किया है कि वो है, वही जानने से तुम जो चाह रहे हैं वो जानने योग्य वो है, वो चीज है जिसे जानना है। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंती न हन्यते, जो गीता का जैसे श्लोक है। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। शरीर को मारने वाला होता है और शरीर से मरने वाला होता है, लेकिन वास्तविक ये आत्मा न मारने वाला होता है न आत्मा मरने वाला होता है। आत्मा न किसी को मारता है न आत्मा कभी मरती है। फिर मारता कौन है? शरीर को ही मारता है। शरीर के अहंकार वाला जो होता है वो मारता है और शरीर के अहंकार वाला ही मरता है। आत्मा के अहंकार वाले को न मौत है न मृत्यु है, इसे कुछ नहीं होता। उसी को लेकर वो गीता में भी श्लोक आया है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे सुखा नहीं सकता, इसे भिगा नहीं सकता। ये जो श्लोक है वो इसी दृष्टि से, ये भगवान ने यही विवेक अर्जुन को बताया था। अर्जुन जब दुखी हो रहा था तो फिर कहते हैं ये कैसा है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम मात्मनः। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात, निष्काम पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से, माने हमको इसमें से क्या लेना है, ये जब हमारी कामनाएं पूरी खत्म हो जाएगी, कुछ कामना नहीं रहेगी और इंद्रिया शांत हो जाएगी, प्रसाद माने शांति प्रसन्नता, इंद्रिया शांत हो जाएगी, इंद्रियों की जो चंचलता है वो खत्म हो गई है। मन इंद्रियों के कारण हमेशा चंचल रहता है, लेकिन जब ये मन और इंद्रिया पूरी शांत हो गई है, प्रसाद माने उसे एक शांति प्राप्त हो गई है, कोई कामना ही नहीं बची है, तब उस आत्मा की महिमा अपने आप दिखती है। उसी को अपने यहां साधना से होने वाली शुद्धि कहा गया है। ये जप ध्यान क्या है, ये साधना क्या है, इंद्रियों को शांत करना है। इससे प्राप्त नहीं होता, लेकिन इससे जब मन शांत हो जाता है तब वो आत्मा दिखता है। इसका उदाहरण बताते हैं कि पानी में, जल में हमने एक सोने का सिक्का डाल दिया है, लेकिन पानी हिल रहा है, सिक्का दिखता नहीं है। हमारी इंद्रियां चंचल है, मन चंचल है, सतत वो पानी हिल रहा है तो सोने का सिक्का में नहीं दिख रहा है। जब वो इंद्रिया शांत हो जाएगी, मन रूपी पानी वो जल शांत हो जाएगा, उसमें कोई चलन वलन नहीं है, अपने आप सिक्का दिखने लगेगा। अब सिक्का आपने प्राप्त किया क्या? नहीं, वो तो वहीं था। वैसे ही वो आत्म तत्व यहीं पर है, हमें केवल इंद्रियों की चलन वलन की चंचलता, कामनाओं के कारण जो चंचलता इनमें आई है, इनको शांत करना है। ये जैसे शांत हो जाएगी, अपने आप वो चलायमान न होने वाली वो सत्ता हमें यहां दिख जाएगी। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है, हर्ष से युक्त और मत से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। यमराज कहते हैं कि देखो वो कैसा है, सोए हुए भी मन कहां भटकता है, कहां चला जाता है, और शयन करता हुआ सब ओर पहुंचता है, और वो मद हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को, माने कैसा अद्भुत उसका स्वभाव है, कैसा अद्भुत स्वभाव है उसमें। अच्छा, आनंद तो उसका स्वभाव ही है, हर्ष माने आनंद, वो आनंद है, लेकिन उसमें मद नहीं है, मद से रहित है। माने यहां अहंकार कहा है कि आनंद की वृत्ति तो है लेकिन उसके साथ वो अहंकार जुड़ा हुआ नहीं है, और फिर भी वो जाता है आता है। हम लोग अहंकार से आनंद प्राप्ति के लिए आते हैं जाते हैं, उसका वैसा नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ही आनंदमय है, इसलिए हर्ष तो है, लेकिन उसको जो ऐसे मत से रहित, इसको वो बड़ा कठिन है, माने करके तो ये समझने को बड़ा कठिन लगता है, और इसीलिए इसको मैं जानता हूं। मृत्यु के देवता यमराज कहते हैं कि इसलिए और कौन जानता है, कोई इक्का दुक्का देवता, हम सब देवता नहीं जानते, ये देवताएं आत्मज्ञान को नहीं जानते। कल हमने कहानी देखी ना, इंद्र चंद्र और ये इन्होंने कोई नहीं जानता। इंद्र ने भी बहुत तपस्या की थी, फिर उसको थोड़ा कुछ समझा था, बाकी देवताएं भी नहीं जानती। फिर कहते हैं तथा अब यह भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है। शोक, ये छांदोग्य उपनिषद में नारद जी इसलिए सनत कुमार को कहते हैं कि केवल आत्मज्ञान से शोक दूर होता है, दुख दूर होता है। ये जो पीड़ा, पूरा पीड़ा अनुभव करने की जो बात है, शोक, ये केवल आत्मज्ञान से जाता है। तरति शोकम आत्मवीति, हमने सुना है मेरे को शोक होता है, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन फिर भी शोक करता हूं, आपको वो नहीं है शोक, इसलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए। सनत कुमार को नारद जी कहते हैं, अब यही कह रहे हैं कि ये शोक का अंत हो जाता है, इसलिए शोक की समाप्ति के लिए ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीर में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जब उसको जाना जाता है तब उसे किसी बात का शोक नहीं होता। कैसा है वो? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणते तन स्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि ये आत्मा ये प्राप्त करने की चीज नहीं है, इसको केवल गंदगी हटाने का प्रयास हम कर सकते हैं, ये प्रयास है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। केवल हमारे जो संस्कार चंचलत्व इंद्रियों का आकर्षण से जो आ गया है उसको हमें हटाना है। उसको जब हम हटा देंगे आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो लोहा है और मैग्नेट उसको आकर्षित नहीं कर रहा है क्योंकि वो कीचड़ लग गई है, कीचड़ को साफ करो, घिस डालो, जैसे कीचड़ निकल जाएगी लोहा फटाक से चुंबक को चिपक जाएगा। इसी प्रकार चंदन की लकड़ी है गंदगी में पड़ी है लेकिन चंदन की सुगंध कभी जाती नहीं है, लेकिन अभी सुगंध नहीं दे सकती, वो कीचड़ से सनी हुई है, तो उसको धो, उसको रगड़ो, उसका कीचड़ निकाल दो। जैसे कीचड़ निकल गई वो चंदन अपनी सुगंध देना शुरू हो जाएगा। हमने कहा चंदन की सुगंध प्राप्त की, लाई कहीं से? नहीं, हमने केवल कीचड़ को साफ किया। वैसे ही हमें जो चित्त शुद्धि करने साधना करना, माने क्या करके साधना को इस प्रकार हम शून्य होकर ये शुद्धि प्रक्रिया करनी है, और जानकर कि यहां आत्मा होने के कारण मन है, आत्मा होने के कारण बुद्धि है, और ये आत्मा होने के कारण यह कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया है, और आत्मा होने के कारण वो उसका प्रकाश है पूरे पंचमहाभूतों में, शरीर में, देह में है, इसलिए यहां सब कुछ चल रहा है। माने यहां करने वाला कौन है? आत्मा है, मैं नहीं हूं। इस प्रकार उस आत्मा को ही कर्ता मानकर, स्वयं को कर्ता न मानकर, ठाकुर ने कहा है स्वयं को अकर्ता जानकर कर्ता जैसे काम करो, साधना करो, तब कहीं ये शुद्धि होती है। नहीं तो क्या करती है शुद्धि? मैं ये साधना करूंगा, वो साधना करूंगा, मैंने ये साधना किया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, फिर से आपको पकड़ लेता है भोग, फिर से आपको फल दे देगा, फिर से आपको उलझा देगा। इसलिए बड़ा कठिन है ये। फिर कहते हैं ना विरतो दुश्चरिता न अशांतो न समाहित नाशांत मानसो वापी प्रज्ञानेन आपनुयन आपनुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रिया शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। यही हमने अभी इसकी चिंता की। यस्य ब्रह्मचक्षत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्युर्यस्य यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। अब कहते हैं जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात और तथा शाकादि है, हम दाल भात खाते हैं ना या सब्जी चा भात खाते हैं ना, तो ये कह रहे ये दो जो वर्ण है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इनके पास सब सामर्थ्य रहती है दोनों। ब्राह्मण अपनी तपस्या से और क्षत्रिय भी अपनी तपस्या से। अब ये जिस समय ये उपनिषद आदि कहे गए थे उस समय के समाज में जिस समय जो पावरफुल लोग कौन थे? ये दोनों ही थे। इनके पास अस्त्र शस्त्र बल रहता था। हम देखते हैं क्षत्रिय बल विश्वामित्र के पास था और ये ज्ञान बल वशिष्ठ के पास था। इसलिए वशिष्ठ और क्षत्रिय ये विश्वामित्र के युद्ध की वगैरह बातें आती है। इनके पास छात्र बल था और इनके पास ब्रह्म बल था, दोनों में कितना युद्ध और क्या क्या हुआ, क्यों? क्योंकि ये दो शक्तियां ही हमेशा बल प्राप्त करती। लेकिन कहते हैं ये दोनों भी, ये बल इस आत्मज्ञान के सामने कुछ नहीं है, ज्ञान केवल, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान और क्षत्रिय बल का। क्योंकि विश्वामित्र समझते हैं कि मेरे इतने अस्त्र शस्त्र सब है ये बेकार है, ब्रह्म बल ही वास्तविक ये है बल है, और ये बल लाने के लिए ही विश्वामित्र ने अपना सब कुछ राज्यपाल पर छोड़कर तपस्या में बैठ गए थे, और कितने करोड़ों लाखों हजारों वर्ष तपस्या की थी, और फिर उन्होंने जब वो ब्रह्मज्ञानी हो गए थे उसके बाद में राम जी को उन्होंने ले गए थे, वो ज्ञान दिया था, ये हम देखते रामायण में। अभी यहां द्वितीय वल्ली खत्म हो गई है, तृतीय वल्ली खत्म नहीं हुई है, इसके बाद दूसरा अध्याय है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, कल फिर हम इतना ही समय लेंगे, और ये जितना हो सके फास्ट तीसरे वल्ली में क्या, दूसरे अध्याय में बहुत से श्लोक एक अर्थ के हैं, तो कल हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक आध इसमें एक जैसे श्लोक है सब, तो उस प्रकार हम कम से कम ये पूरे उपनिषद को हम एक बार इसका अर्थ तो समझ लेंगे। फिर ये तो बहुत धीरे धीरे एक एक श्लोक के ऊपर कितनी चिंता की जा सकती है और कितना कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर आचार्य ने इसकी जो व्याख्या की है ना, इसमें इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें और है आनंददायक, लेकिन समय अभाव के कारण हम केवल ऊपर ऊपर इसका जान रहे हैं, और आज अब ये इसका पहले अध्याय की दूसरी वल्ली हमारी खत्म हुई है, तीसरी वल्ली प्राप्त और प्राप्तव्य भेद से दो आत्मा, यहां से हम कल ये करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।